झलक तुम्हारे लिए ही ये सब कुछ कर रही है। जैसे ही रणविजय ने ये कहा, सिद्धार्थ ने लापरवाही से अपने कंधे उचकाए और अगले ही पल बोला, ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है, शाम को हल्दी का फंक्शन भी है, अभी मुझे तैयार भी होना है। इसके बाद वो लोग जल्दी ही शहर के सबसे बड़े और मशहूर मॉल की ओर निकल गए। उधर उसी मॉल में झलक, अनामिका, आदित्य और कबीर भी पहुंच चुके थे। लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही सिद्धार्थ, आकांक्षा और रणविजय वहां आ चुके थे। आकांक्षा लगातार एक से बढ़कर एक फैंसी और बेहद महंगे कपड़े निकलवा रही थी। वो हर ड्रेस सिद्धार्थ के सामने रखकर उसकी राय पूछने की कोशिश कर रही थी। लगातार वो सिद्धार्थ की आंखों के सामने अलग अलग ड्रेसेस दिखा रही थी और उसने साफ साफ कह दिया था कि वो वही कपड़े पहनेगी जो सिद्धार्थ को पसंद आएंगे। वहीं रणविजय मुस्कुराते हुए ये सब देख रहा था। हालांकि उसके मन में अभी भी सिद्धार्थ के लिए नफरत कम नहीं हुई थी, लेकिन उससे पहले वो झलक से निपटना चाहता था। जनक ने जिस तरह उसे थप्पड़ मारा था और अनामिका ने जिस तरह उसकी बेइज्जती की थी, वो बात वो बिल्कुल भी नहीं भूल पाया था। वैसे भी उसने मन ही मन सोच लिया था कि सिद्धार्थ से तो वो कभी भी बदला ले सकता है। आखिर आकांक्षा ओबेरॉय, जो सिद्धार्थ की होने वाली पत्नी थी, कहीं न कहीं उसके प्रभाव में थी, इसलिए जब चाहे वो सिद्धार्थ को नीचा दिखा सकता था। लेकिन फिलहाल उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी झलक मल्होत्रा थी। सबसे पहले वो उसे सबक सिखाना चाहता था, उसके बाद ही वो सोचेगा कि सिद्धार्थ के साथ क्या करना है। इसलिए फिलहाल वो एक अच्छे भाई की एक्टिंग पूरी ईमानदारी से कर रहा था। वहीं सिद्धार्थ को शॉपिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। आकांक्षा जो भी कपड़े पसंद कर रही थी, वो बिना देखे लगभग सब खरीदता जा रहा था। उसने आकांक्षा को पूरी छूट दे दी थी कि उसे जो भी पसंद आए वो खरीद सकती है। वहीं आकांक्षा मुस्कुराते हुए एक से बढ़कर एक महंगी चीज़ें खरीद रही थी। सिर्फ कपड़े ही नहीं, बल्कि अपनी इनरवेयर से लेकर हील्स तक, ज्वेलरी से लेकर मेकअप तक, हर चीज़ उसने सबसे महंगे और ब्रांडेड सेक्शन से खरीदी थी, जिनकी कीमत लाखों रुपए तक पहुंच रही थी। हालांकि सिद्धार्थ को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो ये सब सिर्फ दादी की वजह से कर रहा था, और शायद इसलिए भी क्योंकि वो हर हाल में ये शादी करना चाहता था, सिर्फ और सिर्फ झलक को नीचा दिखाने के लिए। फिलहाल आकांक्षा की शॉपिंग चल ही रही थी कि तभी उसकी नज़र मॉल के दूसरे सेक्शन में रखी एक बेहद खूबसूरत साड़ी पर पड़ी। वैसे तो आकांक्षा को साड़ी पहनने का कोई खास शौक नहीं था, लेकिन उस साड़ी को देखते ही वो खुद को रोक नहीं पाई। वो उत्साहित होकर बोली, वो साड़ी देखो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, मैं जाकर उसे ट्राई करके देखती हूँ, अगर वो मुझ पर अच्छी लगी तो मैं उसे खरीद लूँगी। इनफैक्ट आज शाम की हल्दी मैं वही साड़ी पहनूंगी। ये सुनकर सिद्धार्थ ने भी एक नज़र उस साड़ी पर डाली। साड़ी वाकई बेहद खूबसूरत थी, लेकिन अगले ही पल उसने फिर अपनी नज़रें हटा ली और आकांक्षा को इजाज़त दे दी कि वो जाकर उसे खरीद सकती है। लेकिन जैसे ही आकांक्षा उस सेक्शन की तरफ बढ़ी, उससे पहले ही किसी और ने वो साड़ी उठा ली थी। अब तो आकांक्षा पूरी तरह चौंक गई, वो चारों तरफ देखने लगी। उधर दूसरी तरफ वो साड़ी इस वक्त झलक के हाथ में थी, क्योंकि जैसे ही आदित्य की नज़र उस साड़ी पर पड़ी थी, उसे उसी पल झलक याद आ गई थी। उसने तुरंत साड़ी उठाकर झलक की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैं आपको इस साड़ी में देखना चाहता हूँ, क्या आप इसे एक बार ट्राई करेंगी? आदित्य ने इतनी प्यार भरी आवाज में कहा था कि झलक मना नहीं कर पाई। उसने तुरंत साड़ी ले ली और ट्रायल रूम की ओर चली गई। जब तक आकांक्षा वहां पहुंचती, साड़ी पहले ही गायब हो चुकी थी। साड़ी को वहां न देखकर उसका चेहरा पूरी तरह मुरझा गया। वो वापस सिद्धार्थ के पास आकर बोली, वो साड़ी किसी और कस्टमर ने ले ली है, सेल्स गर्ल ने बताया कि वो उसे ट्राई करने गई है, जैसे ही वो बाहर आएगी मैं उससे बात करूंगी, आखिर मैं वही साड़ी खरीदना चाहती हूँ। लेकिन सिद्धार्थ को ना तो शॉपिंग में कोई दिलचस्पी थी और न ही आकांक्षा की बातों में। उसी वक्त उसका फ़ोन बज उठा। उसने फ़ोन कान से लगाया और आकांक्षा की ओर देखकर कहा, तुम्हें जो भी चाहिए खरीद लो, मैं अभी आता हूँ। ये बोलकर वो फ़ोन पर बात करता हुआ वहां से बाहर निकलने लगा। लेकिन तभी ट्रायल रूम का दरवाज़ा खुला। झलक, जिसने अभी अभी वो साड़ी पहनकर ट्राई की थी, तेज़ी से बाहर निकली। वो सबसे पहले आदित्य को अपनी साड़ी दिखाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो बाहर आई, अचानक उसकी टक्कर सीधे सिद्धार्थ से हो गई। सिद्धार्थ का फ़ोन उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर पड़ा और पूरी तरह टूट गया। सिद्धार्थ गुस्से में अपने सामने खड़े इंसान को देखने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र झलक पर पड़ी, वो कुछ पल के लिए पलक झपकाना तक भूल गया। साड़ी में सजी झलक किसी सपने जैसी लग रही थी। वहीं दूसरी ओर आदित्य, जो बाहर खड़ा झलक का इंतज़ार कर रहा था, ये नज़ारा देखकर पूरी तरह चौंक गया। पहले तो सिद्धार्थ को वहां देखकर ही उसे हैरानी हुई थी, लेकिन अब जिस तरह सिद्धार्थ झलक को लगातार देख रहा था, वो बात आदित्य को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। अगले ही पल वो तेजी से झलक की तरफ बढ़ने लगा था। वहीं तब तक आकांक्षा, जो कि सिद्धार्थ के पीछे पीछे ही आ रही थी और उससे कुछ पूछना चाहती थी, जैसे ही उसने वो नज़ारा देखा, उसके शरीर में मानो बिजली दौड़ गई थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस साड़ी को वो खुद पहनना चाहती थी उस साड़ी में झलक इतनी खूबसूरत लगेगी। साड़ी में झलक किसी कयामत से कम नहीं लग रही थी, वो बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही थी। उसकी पतली और आकर्षक कमर साड़ी से हल्की हल्की झलक रही थी। ऊपर से उसका ब्लाउज, उसकी फिटिंग और उसकी पर्सनैलिटी, सब कुछ उस साड़ी के साथ बेहद खूबसूरत लग रहा था। सच तो ये था कि झलक ने उस साड़ी की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए। अब ये अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल हो गया था कि साड़ी ज़्यादा खूबसूरत थी या फिर झलक। वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ लगातार झलक को देखे जा रहा था। अचानक उसके ठीक सामने आकर आदित्य खड़ा हो गया था। आदित्य को वहां देखकर सिद्धार्थ हैरान रह गया, लेकिन अगले ही पल आदित्य ने घूमकर झलक को देखा और साड़ी वाले उस लुक में उसे देखने के बाद उसने सिद्धार्थ के सामने ही झलक को गले से लगा लिया था। आदित्य के ऐसा करने पर झलक पूरी तरह शॉक हो गई थी। वहीं सिद्धार्थ ने गुस्से से अपने हाथों की मुठ्ठियाँ कसकर बंद कर ली। झलक को किसी और के गले लगते देखकर उसके खून में आग लग चुकी थी, लेकिन तभी आकांक्षा आगे बढ़ी और उसने सीधा सिद्धार्थ का हाथ थाम लिया था। फिर वो तुरंत झलक पर इल्ज़ाम लगाते हुए बोली थी, आखिर तुम यहाँ क्या करने आई हो? क्या तुम हमारा पीछा कर रही थी? हाँ, ज़रूर तुम हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आई हो, और वैसे भी इतने बड़े मॉल में आने की तुम्हारी औकात ही नहीं है। ज़रूर तुम आदित्य राणा के पैसों पर यहाँ शॉपिंग करने आई होगी, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम्हें इस तरह के महंगे कपड़े कभी रास नहीं आते। तुम तो वही शनि बाजार, सोम बाजार और मंगल बाजार से 250-300 रुपए वाले सूट, कुर्ते या जीन्स टॉप खरीदने वाली लड़की हो, तुम्हें वही सब पहनना पसंद है, आकांक्षा ने पूरी तरह ताने मारते हुए कहा था। लेकिन झलक ने बदले में केवल एक मुस्कान दी। उसने आदित्य का हाथ पकड़ा, अपने बालों को हल्के से झटका और सिद्धार्थ व आकांक्षा दोनों को पूरी तरह इग्नोर करते हुए वहां से अनामिका, अभय और कबीर के पास चली गई, जो दूसरे सेक्शन में कपड़े देख रहे थे। वहीं रणविजय, जो आकांक्षा और सिद्धार्थ को ढूंढते हुए वहां पहुंचा था, उसने भी ये पूरा नजारा अपनी आंखों से देख लिया था। झलक को देखते ही उसे वो थप्पड़ याद आ गया जो झलक ने उसे मारा था। उसकी आंखों में नफरत भर गई। वो मन ही मन बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें इस तरह की महंगी जगहों पर शॉपिंग करने का, मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारी औकात आखिर क्या है। आज तुम्हें मैं बताऊंगा कि रणविजय खुराना क्या कर सकता है, उस थप्पड़ का बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा। ये सोचकर वो गुस्से से झलक को घूरने लगा था।
फिलहाल कुछ देर बाद झलक ने आदित्य की तरफ देखा और बोली थी, आई एम सॉरी मिस्टर राणा, मुझे नहीं पता था कि वहां सिद्धार्थ और आकांक्षा भी आ जाएंगे, और इस साड़ी में मैं चाहती थी कि सबसे पहले आप मुझे देखें, लेकिन वो पता नहीं कहां से आ गया। कहीं ना कहीं झलक का मूड पूरी तरह खराब हो चुका था। अब आदित्य हल्के से मुस्कुराया और बोला, ये क्या कह रही हैं आप? आपको इस तरह की बात करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि आप छोटी छोटी बातों को लेकर स्ट्रेस लेना पसंद नहीं करती, तो अब शांत हो जाइए। फिर उसने प्यार से झलक को देखते हुए कहा, वैसे आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। वो सिद्धार्थ खुराना तो क्या, मुझे तो लगता है कि पूरे शहर में कोई अंधा ही होगा जो आपको इस लुक में देखने के बाद आपकी तारीफ ना करे और आपको देखकर ठहर ना जाए। जैसे ही आदित्य ने सिद्धार्थ से टकराने वाली बात को इतने आसान और खूबसूरत तरीके से संभाल लिया, झलक को ये बात कहीं ना कहीं दिल के बहुत करीब लग गई थी। उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई थी। अगले ही पल वो आगे बढ़ी और उसने आदित्य को गले लगा लिया था। फिर मुस्कुराते हुए बोली, वाकई मिस्टर राणा, आप कुछ तो खास हैं। जैसे ही झलक ने बिना किसी झिझक के, अनामिका, अभय या किसी और की परवाह किए बिना आदित्य को गले लगाया, कहीं ना कहीं उन तीनों के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। अनामिका मुस्कुराते हुए मन ही मन बोली, वाकई हमारी झलक अब पहले वाली झलक बनती जा रही है। दूसरी तरफ खड़े कबीर और अभय भी मुस्कुरा रहे थे। तभी आदित्य ने हल्के से इशारा करते हुए कहा, वो देखिए, सब हमें ही देख रहे हैं। तब झलक ने बेहद आराम से कहा, तो क्या हुआ अगर देख रहे हैं? वैसे भी हमारी सगाई हो चुकी है और बहुत जल्द हमारी शादी भी होने वाली है, जिसको देखना है वो देखे। झलक ने ये बात इतने आराम और आत्मविश्वास से कही थी कि आदित्य भी मुस्कुरा उठा। वहीं अनामिका, कबीर और अभय झलक की इस खुशी को देखकर बेहद खुश थे, क्योंकि झलक अब धीरे धीरे अपनी पुरानी सामान्य जिंदगी की ओर लौट रही थी। वरना एक समय ऐसा भी था जब वो पूरी तरह पत्थर दिल बन चुकी थी। उसका दिल, उसका दिमाग और उसकी भावनाएं मानो पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। लेकिन आदित्य के उसकी ज़िंदगी में आने के बाद एक बार फिर उसके जीवन में भावनाएं, मुस्कान और खुशियां लौटने लगी थी। ये देखकर उन सभी को बहुत अच्छा लग रहा था। अनामिका ने तो मन ही मन भगवान से सिर्फ एक ही दुआ मांगी थी, मेरी झलक हमेशा ऐसे ही खुश रहे।